डॉक्टर साहब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, मिसाल के तौर पर अगर रिंग वर्म जो है वो जिस्म के एक हिस्से पर हो गया, मिसाल के तौर पर कंधे पर हो गया, तो क्या किसी और हिस्से पे भी हो सकता है या नहीं, सिर्फ वहीं तक महदूद रहेगा ये?
वो अपने साइज में, अपने हदूद में बढ़ सकता है, डायमीटर में बढ़ सकता है। दूसरा ये है कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक ये फैल सकता है।
अच्छा,
जैसे कि आप वहाँ पे छू रहे हैं, फिर दूसरी जगह आपने छुआ दूसरे कंधे में, तो एक जगह से दूसरी जगह तक ये कॉन्टेक्ट से ये हो जाते हैं।
तो यानी अगर कॉन्टेक्ट से ये हो सकता है, तो यानी अगर एक बंदे को रिंगवर्म है और वो दूसरे बंदे से हाथ मिला, उसको भी मुंतकिल हो सकती है बीमारी?
अगर उसने वो लेशन को, वो रिंगवर्म के इन्फेक्शन साइट को छुआ है और उसके बाद में सभी से वो हो रहे हैं, तो मिल रहे हैं, तो हाथ से हाथ भी ये इन्फेक्शन जा सकता है। जैसे कि टॉवल यूज कर रहे हैं, तो वो जो टॉवल यूज कर रहे हैं दूसरे लोग भी वो यूज कर रहे हैं, तो ऐसे होता है।
तो खास ख्याल रखना चाहिए इन चीजों का।
कपड़े यूज कर रहे हैं तो कपड़े से भी वो हो जाता है।
अच्छा, कपड़े से भी जी। सही, यहाँ पर हम तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पर जो है ये थोड़ी के आसपास और गर्दन के हिस्से में है
जी। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे दाढ़ी होता है आमतौर पे, तो ये टीनिया बारबाई हो गया, यानी कि इसे हम लोग बारबर्स इच भी कहते हैं। तो ये खास करके इस जगह पे होता है टीनिया, ट्राइकोफाइटोन ये फंगस से होता है। ये लाल धब्बा हो गया, इसके आसपास आप दे रहे हैं पूरा लाल है, लेकिन जो किनारे किनारे पे है वहाँ पे ज्यादा लाल है, एक कम इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे सूजन है, तो ये टिपिकल एक टीनिया इन्फेक्शन है। तो इसको भी इलाज करना बहुत जरूरी है, ये तो फैलेगा तो दोनों तरफ भी ले लेगा गर्दन पूरा।
तो डॉक्टर साहब कौन से लोग ज्यादा खतरे में रहते हैं? मिसाल के तौर पर हम जब बात करते हैं जिल्द की, तो हम देखते हैं खुश जिल्द है, ऑयली स्किन है हमारे पास, नॉर्मल स्किन है, तो और सेंसिटिव स्किन है, तो इनमें से कौन से ज्यादा लोग जो है वो ज्यादा खतरे का शिकार रहते हैं कि इन्हें रिंगवर्म होने का खदशा हो सकता है?
जैसे लोग की जनरली जो अपने स्किन का केयर नहीं करते उतना, सब लोग तो करते हैं लेकिन कोई अफराद अगर अपने स्किन का केयर नहीं करे, और जो लोग जैसे मिलिट्री में ग्रुप्स में रह रहे हैं, जैसे कि जो हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, एक ग्रुप में रह रहे हैं, तो जहाँ पर ये ग्रुप में रहते हैं लोग, वहाँ पर एक आदमी को अगर हो गया तो और लोगों में फैल जाता है, तो ऐसा भी है। और ये अपने रहने का, पहनावे का, खाने का, ये सब चीज़ का जनरल ये जो केयर होता है, इससे भी अगर खूब इसका ना हो तो इससे भी इन्फेक्शन होता है,
हो सकता है। तो खास जिल्द का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी जिल्द में ये हो सकता है। डॉक्टर साहब हम चलते हैं इस तरफ कि इसके किसी खास यानी अभी रिंगवर्म हम देखते हैं टेक्नोलॉजी ने और खास तौर पर मेडिकल की दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसका इलाज भी होगा, तो इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है?
जी मुमकिन है। इलाज से पहले हम लोग ये क्लिनिकल डायग्नोसिस कर लेते हैं, ऐसे देखते हैं तो मुआयने करके भी अंदाजा हो जाता है। जैसे यहाँ पे पैर का हो गया तो इटिनिया पेरिस हो गया, तो इस शक्ल देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे पीप नहीं जमे हैं, चर्क नहीं जमे हैं, सूखा हुआ है, थोड़ा सा डिसफिगर्ड है, खुजली है, तो ये हो गया, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया। दूसरा ये है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वेट प्रिपरेशन कहते हैं, ये लैबोरेटरी टेस्ट है, जैसे स्क्रैपिंग ले लेते हैं जहाँ पे ये इन्फेक्शन है वहाँ पर का थोड़ा सा नमूना ले लेते हैं, स्ट्रैप सैंपल, तो वो जाकर लैबोरेटरी में वहाँ पर
टेस्ट
के लिए स्लाइड में देखते हैं, तो वो भी पता चल जाता है
कि ये रिंगवर्म है या नहीं है जी।
और दूसरा है वो ये कि ये वुड लैम्स एग्जामिनेशन कहते हैं, तो ये भी एक टेस्ट हो गया। ये टेस्ट कोई कराते हैं कोई नहीं कराते हैं, ऐसे क्लिनिकल डायग्नोसिस भी हो जाता है। तो उसके बाद में हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, ट्रीटमेंट भी बहुत किस्म के हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट यानी मलहम जो लगाते हैं उससे भी ठीक हो जाता है, एंटी फंगल होता है वो। दूसरा खाने का कोर्स भी होता है, मान लीजिए अगर सर में टीनिया कैपिटिस हो गया, सर में अगर बालों में ये फंगस का इन्फेक्शन है, तो शैम्पू भी आता है इसमें, शैम्पू भी आता है, जैसे केटाकोनाजोल का हो गया एंटी फंगल है, तो ये शैम्पू में भी आता है। दूसरा ये सेल्सन आता है, यानी कि सेलेनियम का कम्बिनेशन वाला शैम्पू आता है, ये भी ये सर का जो फंगस इन्फेक्शन होता है वो भी ट्रीटमेंट करता है।